जय राधा माधवा कुंज बिहारी, राधा माधवा कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी,
सब लोग बोलिए
गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदा नंदन व्रज जन रंजन, यशोदा नंदन व्रज जन रंजन, जमुना तीरावन चारी, जमुना तीरावन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदा नंदन व्रज जन रंजन, यशोदा नंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरावन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी,
जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, ऋषि राधा गिरिधारी भगवान की, निथाय गौर चंद्र भगवान की, शील प्रभुपाद की, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, रथ यात्रा महोत्सव की, हरे कृष्णा। रथ यात्रा के उत्सव में थोड़ा सा अंतर हो गया है, वो ये है कि हमारा जो क्लिनलीनेस वीक है, स्वच्छता सप्ताह, वो 26 जून से 2 जुलाई तक प्रीपोन किया गया, और 3 तारीख को जो महासफाई का इंतज़ाम हमने रोड पर किया था, उसके साथ साथ एक ही दिन में हॉस्पिटल की महासफाई और रोड की सफाई एक साथ में, और फिर रथ यात्रा जो है वो 9 तारीख को जैसे तय की है वैसे होगी। कारण यह है कि एक दिन अलग से रोड सफाई के लिए टाइम निकालना और एक दिन वापस हॉस्पिटल की महासफाई का टाइम निकालना, ये ठीक नहीं था। इसलिए मैनेजमेंट के सुझाव की तरफ से हमने एक्सेप्ट कर लिया है कि अभी 2 तारीख तक हमारा जो क्लिनलीनेस वीक है वो 26 तारीख से जून से 2 जुलाई तक चलता रहेगा और 3 जुलाई को दोपहर को 1:30 को महाक्लिनिक चालू हो जाएगा और वो शाम तक चलेगा। हरे कृष्णा। तो जगन्नाथ भगवान का आविर्भाव कैसे हुआ फिर एक बार हम दोहराना चाहते हैं कि इस साल की जगन्नाथपुरी की जो यात्रा है, जो हॉस्पिटल के स्टाफ, उनका परिवार, डॉक्टर्स, उनके परिवार सबके लिए आयोजित की जाने वाली है जगन्नाथपुरी की यात्रा, वो 22 दिसंबर से 31 दिसंबर तक तय की गई है। 22 दिसंबर में ट्रेन में बैठना है और 24 से 29 तक यात्रा होगी और 29 को बैठकर 31 को सुबह 4 बजे में मुंबई पहुँच जाएगा बस। तो अभी 2-3 दिन में इसका सर्कुलर निकलेगा और आपको जानकारी पूरी मिलेगी इस कौन से ट्रेन से जाना है, क्या करना है, नाम लेना है वगैरह। तो आप उसमें जितना जल्दी हो सके उतना अपना नाम देना, तो क्रिसमस का टाइम है फिर वैसे भी रहने की व्यवस्था वहाँ पर करनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा जगन्नाथ भगवान बहुत अनोखे भगवान हैं। हाँ, हर भगवान का स्वरूप जो है उसके हाथ और पैर और सब होते हैं। नरसिंह भगवान को देखा है, नरसिंह भगवान में और विचित्र भगवान, आधा शरीर मनुष्य का और आधा शरीर सिंह का, बहुत अद्भुत भगवान। वामन देव, कुर्म भगवान तो कछुआ की तरह आते हैं, मत्स्य अवतार मछली के रूप में आते हैं, वराह अवतार पिग यानी कि बोर, जैसे कि कैसे कहते हैं उसको, सुअर के रूप में आते हैं। हर प्रकार से हर अवतार में भगवान अलग अलग स्वरूप में अवतार लेते हैं और सुंदर सुंदर लीला करते हैं। जगन्नाथ जी का अवतार में है, इनके अवतार में इनके पैर ही नहीं है और हाथ की उंगलियां नहीं है, हाथ है स्तंभ की तरह है, बड़ा बड़ा चेहरा है, बड़ी बड़ी आंखें हैं और सुभद्रा जी के तो हाथ भी नहीं है। तो ये कैसे हुआ, इसका रहस्य क्या है? तो उसका रहस्य ऐसा है कि आप सब जानते हैं कि उम्र के 10 साल और 4 महीने के बाद कृष्ण भगवान वृंदावन को छोड़कर कहाँ गए? यस, कंस को मारने के लिए कहाँ गए? मथुरा गए। तो उन्होंने वादा किया था कि मैं 2 दिन में आऊँगा। लास्ट टाइम मैंने आपको कहानी सुनाई थी कि वो जो बिजवारी गांव में चले गए तो वहाँ पर बिजली कड़की और सब गोपियाँ बेहोश हो गई और भगवान का रथ अक्रूर लेके चले गए आगे। फिर ये कुछ देर के बाद में जगे, होश में आए और फिर भाग भाग के वो गए, वहाँ पर उनको उन्होंने पकड़ा एक गांव में, उसका नाम है पलसों, और उस गांव में कृष्ण बलराम ने फिर उनको वादा किया कि हम परसों आएंगे और ऐसे बोल के जो भगवान चले गए, वो 2 दिन चले गए, 20 दिन चले गए, 200 दिन चले गए, इस तरह से 112 साल चले गए। हर रोज हर रात को भगवान की आने की तैयारी करते थे वो, और भगवान आ रहे हैं मतलब इतने प्रियतम उनके आ रहे हैं तो कितनी तैयारी करते होंगे वो। रोज़ अलग अलग फूलों की मालाएं, मैंने आपको पहले बताया था कि वृंदा देवी जो है वो भगवान की ऐसी सखी हैं कि उनका विशेष सेवा है कि आज शाम को भगवान कृष्ण और राधा रानी कहाँ मिलेंगे, इसकी पूरी योजना वृंदा देवी बनाती है। वृंदा देवी के पास में 1000 तोता है और 1000 तोता जो है वो हर दिशा में जाते हैं, दिन भर घूमते हैं सब जगह पर और पता करते हैं कि कौन सी जगह पे कौन सा रंग खिला हुआ है, किस तरह से कौन सी खुशबू आ रही है, कौन से फूल की खुशबू आ रही है और कौन से फल खिले हैं, कौन से फूल खिले हैं, वातावरण में प्रधान रंग कौन सा है, ये सब जानकारी देते हैं रिपोर्टर की तरह। और उन सारी जानकारी के मिलने के बाद में संध्या होने के पहले वृंदा देवी तय करती है कि आज के दिन राधा और कृष्ण इस वन में मिलेंगे और उस वन में मिलने के पहले इस वस्त्र को, इस रंग के वस्त्र को पहनेंगे, ये राग में भजन गाया जाएगा, ये व्यंजन खाने के लिए बनाएंगे, इस तरह से तांबूल बनेगा, इस तरह से उनकी शया बनेगी, इस तरह से जिस तरह हर प्रकार की व्यवस्था जो है वो वृंदा देवी बनाती है। रोज शाम को नया स्टेज बनता है, नया रहने का इंतज़ाम, नया खाने का इंतज़ाम, नया भजन नृत्य गायन सब वाद्य सब व्यंजन सब बनाकर जाते हैं। और फिर कौन राधा को सजाएगा, कौन कृष्ण को सजाएगा, इसका भी ड्यूटी होता है। फिर वो सखियाँ कृष्ण को सजाएंगी, कोई सखियाँ राधा को सजाएंगी, फिर वो समय तय करेंगी कि इस समय पे उनको सजा सजा के आपको इस जगह पर लेके आना है। तो कौन स्वागत करेगा उनका, कौन आरती उतारेगा, कौन गीत गाएगा, कौन नृत्य करेगा, किस समय भोजन होगा, किस समय नाश्ता होगा, किस समय शयन किया जाएगा, किस समय कौन से गीत गाए जाएंगे, कौन से फूल पहनाए जाएंगे, कौन सा फूल की डेकोरेशन होगी, ये सब डिटेल में आयोजन वृंदा देवी करती है। और उसके लिए दिन भर गोपियाँ मेहनत करती है। जैसे आपके घर में अगर हम शाम को कुछ आज उत्सव होगा तो आप कल से परसों से मेहनत करेंगे ना उसके लिए, कम से कम उस दिन तो करेंगे दिन भर छुट्टी लेकर। तो ऐसे रोज ब्रज में उत्सव होता है रोज। और कौन सा उत्सव होता है, वो राधा और कृष्ण के मिलन का उत्सव होता है। जय जय राधा कृष्ण युगल मिलन, आरती करो या ललिता आदि सखी जन, रोज के रोज उत्सव होता है। और दिन भर व्यंजन बनाना, डेकोरेशन बनाना, मालाएं बनाना, फूल बनाना, फल बनाना, और शाम को फिर वो एक्चुअल उत्सव होता है। फिर गीत गायन, नृत्य, मिलन का आनंद सब होता है। उसके नृत्य भी होता है, रासलीला भी होती है, नाटिकाएँ भी होती है, व्यंग्य भी होता है, सब तरह का आनंद होता है। ऐसा आनंद हर रोज 10 साल 4 महीने तक प्राप्त करने के पश्चात अचानक भगवान चले जाते हैं। और क्या बोल के जाते हैं, परसों आएंगे। 2 दिन तो ठीक है, 2 दिन में भी बहुत दर्द को सहन करते हैं, लेकिन उम्मीद है कि आएंगे। तो आपको वादा है कि आएंगे तो थोड़ा दर्द कम होता है, लेकिन जब वादा पूरा किया और नहीं आए दर्द बढ़ा। और एक दिन रुकेंगे, एक हफ्ता और रुकेंगे, एक हफ्ता गया, एक महीना गया, लेकिन रोज़ तैयारी चल रही है। रोज़ तोते जा रहे हैं, रोज़ प्लानिंग हो रहा है, और रोज़ तैयारी हो रही है, रोज़ व्यंजन बन रहे हैं, रोज़ मालाएं बन रही हैं। लेकिन शाम को जब वो लौट के नहीं आते हैं भगवान, तो सारी मालाएं टूट जाती हैं और तोड़ देते हैं उसको, सब खाद्य पदार्थों को तोड़ देते हैं, सब उध्वस्त कर देते हैं जो बनाया हुआ है। और छातियाँ पीट पीट कर रात रात भर जंगल में गोपियाँ रोती हुई पड़ी रहती हैं। फिर सुबह उठती हैं नई आशा लेकर कि आ जाएंगे, और फिर उसकी तैयारी होती है। आप सोच सकते हैं कितना सहनशीलता है, कितना पेशेंस है, कितना धैर्य है उनके मन में। वेट कर रहे हैं, आएंगे, उन्होंने वादा किया है, वो हमारे प्रियतम हैं, वो आएंगे ज़रूर। इतनी आशा लेकर उनका जीवन चल रहा है। ऐसे कहा गया है शास्त्र में कि आशा ही हमारे जीवन का एक आधार है। समझो, आपके जीवन में आशा नहीं होती तो आप काम ही नहीं करते, क्यों काम करेंगे। अगर आशा ही नहीं है जीवन में, पूर्ण निराशा है, तो जीवन व्यर्थ है हमारा। जीवन में सारा जो हमारा उत्साह है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन हमें आशा है, हाँ हमारे बेटे बड़े होंगे, वो ऐसे ऐसे करेंगे, हाँ हमारी शादी होगी, हाँ हमारा अभी कभी जो आज स्थिति बहुत मुश्किल है, कल सुधरेगी स्थिति हमारी, फिर ये करेंगे, फिर वो करेंगे, फिर गाँव जाएंगे, फिर वैसे करेंगे। अभी छोटे घर में रह रहे हैं, तो रिटायर होंगे तो गाँव जाएंगे, बड़े घर में रहेंगे, खेती करेंगे, नेचुरल एनवायरनमेंट में रहेंगे, हाँ फिर से दोबारा हमारे पुराने बचपन की याद करेंगे। ऐसे हम लोग आशा करते 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 हमारे जीवन को जीते रहते हैं। और आशा ही जीवन का एक बहुत पावरफुल चीज़ है। हाँ, भक्तों की आशा क्या होती है, अभी हम तड़प रहे हैं दुनिया में, जन्म मृत्यु का दुख भोग रहे हैं, लेकिन एक दिन आएगा हम जीवन से मुक्ति पाएंगे, और जीवन को मुक्ति पाने के बाद भगवान को मिलेंगे, भगवान के धाम में जाएंगे, फिर वहाँ जन्म नहीं होगा, मृत्यु नहीं होगी, बुढ़ापा नहीं होगा, बीमारी नहीं होगी, सब दुखों का अंत हो जाएगा। बस इस जीवन में हमको भक्ति की परिपूर्णता करनी है। एक दिन हम आशा रखते हैं कि हम भगवान के परिपूर्ण भक्त बनेंगे, शुद्ध भक्त बनेंगे, भगवान के लिए प्रेम उत्पन्न करेंगे हृदय में, और शुद्ध भक्त बनते हुए अंतिम क्षण में भगवान का नाम लेते हुए उनके धाम में जाएंगे। इस आशा में हम जी रहे हैं, और ये आशा कोई ऐसी स्वप्न नहीं है हमारा, झूठा स्वप्न नहीं है, ये सच्चाई है। जो हमारा जीवन चल रहा है वो एक झूठ है, क्योंकि उम्मीद कर रहे हैं भौतिक दुनिया में आनंद मिलेगा, आनंद नहीं मिल रहा है, धक्का खा रहे हैं, तो और जिएंगे, मर रहे हैं बीच में, हाँ बहुत योजना बना के रखी है, बीमारी आ रही है बीच में, बहुत योजना बना के रखी है, बीमार पड़ गए, बूढ़े बन गए, सारी योजना फेल हो गई। तो जीसस क्राइस्ट कहते हैं कि इस दुनिया में आनंद प्राप्त करने का प्रयास करना यही दुख का कारण है, सबसे बड़े दुख का कारण, कि हम इस दुनिया में आनंद लेने का प्रयास कर रहे हैं, यही हमारे दुख का मूल कारण है। तो क्या बोलते हैं, अगर इस दुनिया में सुख पाना है, जीसस क्राइस्ट बता रहे हैं बाइबल में क्या करना चाहिए, इस दुनिया में सुख प्राप्त करने का प्रयत्न छोड़ देना चाहिए। वही आज भी दुनिया में सुख प्राप्त कर सकता है। जैसे ही आपके सुख की उम्मीद खत्म हो गई दुनिया की, तुरंत आपका सुख का आरंभ होता है। क्यों? क्योंकि जैसे भौतिक दुनिया से आपका दिल हट जाएगा, आध्यात्मिक दुनिया में आपका दिल लग जाएगा, भगवान के विषय में आपका ध्यान बढ़ेगा, और जैसे भगवान के आपका संबंध जुड़ गया, तुरंत आनंद के आरंभ जीवन में हो गया। समझना बहुत ज़रूरी है। हम वृंदावन में जाते हैं और मदन मोहन जी भगवान का दर्शन करते हैं, राधा मदन मोहन। उनका काम ही ये है कि भौतिक दुनिया से हमारा आकर्षण हटाकर उनकी ओर, उनके चरणों की सेवा की ओर आकर्षण स्थापित करें। संबंध भगवान कहते हैं उनको, संबंध भगवान, जो उनके साथ में अपना संबंध को जोड़ देते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जिनका संबंध जुड़ा हुआ है, केवल जुड़ा नहीं है, उसमें रत है, पूरे मशगूल है, उसके अंदर मग्न हो गए हैं, दिन रात केवल भगवान के बारे में सोचते हैं और दिन रात केवल उनकी सेवा में आयोजन करते हैं, मेहनत करते हैं, व्यवस्था करते हैं, योजना बनाते हैं, और जब उनको भगवान को रोज़ मिलते हैं, रोज़ उनके साथ में आनंद लेते हैं, क्या उनके आनंद की अवस्था होगी और क्या उत्कट दिल के स्तर पर उनको आनंद मिलता होगा। ऐसी गोपियाँ और ऐसे ब्रजवासी जन जब भगवान के विरह का अनुभव करते हैं, उनसे अलग हो जाते हैं, उसको बोलते हैं योग और वियोग। योग मतलब मिलना और वियोग मतलब बिछड़ जाना। कितना दर्द हो गया होगा उनको। अगर हमारे पास किसके साथ प्रेम है, जिसके साथ मिलने में हमको बहुत आनंद आता है, जितना मिलने में आनंद आता है उसके अधिक आनंद, अधिक दुख जो है बिछड़ने से होता है। कहते हैं भगवान के परम प्रेमी भक्त हैं, और जब भगवान से बिछड़ते हैं तो हम उनके दुख का अंदाज नहीं लगा सकते कि उनकी प्रिय वस्तु उनसे छीनी जाती है, कितना दर्द का अनुभव करते हैं। ऐसे अनुभव गोपियों ने किया और दिन रात याद करती थी कि भगवान ने कैसे आनंद दिया, कैसे गिरिराज गोवर्धन को उठाया, कैसे हमारे घर में आके मक्खन चुराया, कैसे तुतले तुतले बोल बोलते थे, कैसे एक दिन हरिश्वासुर आया उसको मार दिया भगवान ने, धनुकासुर को बलराम जी ने मार दिया, किसी को मारा जमुना किनारे, हाँ तो पुतना आई थी बालक अवस्था में मार दिया उसको, और क्या क्या जमुना जी के किनारे रास रचाया, बांसुरी बजाई, गेम खेला उन्होंने, कितना आनंद दिया उनको। तो ये आनंद को केवल द्वारका में एक ही व्यक्ति जानते थे, क्योंकि जब भगवान चले गए वृंदावन को छोड़कर तो कंस का वध किया उन्होंने। जैसे कंस का वध किया तो कंस के भय से वसुदेव ने अपनी दूसरी पत्नी जो है रोहिणी, उसको नंद महाराज के घर में रखा था, क्योंकि नंद महाराज और वसुदेव मित्र थे, तो कंस के भय से उन्होंने रोहिणी को उनके पास रखा था, इसलिए बलराम जी का जन्म गोकुल में हुआ था। और जैसे ही कंस का वध हो गया, कंस का भय खत्म हो गया, तो वसुदेव ने अपनी पत्नी को बुला लिया, देव के साथ में थी जेल में उनके साथ में, और रोहिणी को बुला लिया उन्होंने, और सारे ब्रजवासी जो है नंद महाराज यशोदा सब लोग ब्रज में रहे, क्योंकि उनको छोड़ के जाने की आज्ञा नहीं थी। तो रोहिणी ऐसी एक ही व्यक्ति थी जिन्होंने भगवान के जन्म से लेकर भगवान जब तक वृंदावन में थे, गोकुल में थे, नंदगांव में थे, बरसाने में थे, उतना सारा जो घटनाएं घटी वहाँ पर, वो हर चीज़ का आनंद रोहिणी ने लिया था। रोहिणी ने सारी घटनाओं को अपने आँखों से देखा था। तो वो पहले गई मथुरा, तो भगवान ने मथुरा से अपना राज्य को हिला दिया, ट्रांसफ़र किया उसको, और द्वारका में स्थापन किया राज्य अपना। तो द्वारका में गई रोहिणी जी, और द्वारका में जाइए तब भगवान के विवाह हुए, है ना, आप जानते हैं ना, सबसे पहले रुक्मिणी का विवाह हुआ, सत्यभामा का हुआ, फिर लक्ष्मणा का हुआ, मित्रविंदा का हुआ, भगवान की 8 पटरानियाँ हैं, पटरानियों की पटरानी रुक्मिणी हैं, और उसके बाद में जरासंध के जो भौमासुर के जेल में 16,000 कन्याओं को उसने बंद करके रखा था, और वो कन्याओं को बंद करके इसलिए रखा था कि एक एक करके उस अविवाहित कन्याओं का बलि देकर उसको शक्तियाँ प्राप्त करनी थी, इसलिए उन्हें अलग अलग राज्य में जाकर उसकी राजकन्याओं को पकड़कर कैद करके रखा था। जब भगवान ने भौमासुर का वध किया तब वो जेल में गए और सब कन्याओं को उन्होंने रिहा कर दिया, तो उन्होंने कन्याओं ने कहा कि अरे अब हम कहाँ जाएंगे, जाओ अपने घर जाओ, फिर हम घर में कैसे जाएंगे, हमारे धर्म में ऐसा नियम है कि अगर अविवाहित कन्या किसी और के घर में, घर से बाहर अगर एक रात रही तो उसको भ्रष्ट बना जाता है, हम तो कई साल से यहाँ पड़े हुए हैं इस भौमासुर के जेल में, तो हमारे घर के लोग हमको स्वीकार नहीं करेंगे, और कोई हमें शादी भी नहीं करेगा क्योंकि हमको भ्रष्ट माना जाएगा। तो ना हम यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे, आपने हमको रिहा कर दिया, लेकिन हमको अभी आत्महत्या करने के अलावा कोई चांस नहीं है और कोई रास्ता नहीं है। बोले क्या किया जाए फिर उसके लिए? उन्होंने कहा एक ही रास्ता है, अगर आप हमसे विवाह करेंगे तो ये सारा समस्या समाधान हो सकती है। भगवान ने बड़ी दया से बड़ी करुणा से उनके जीवन को उनके प्रेम को उनकी भक्ति को बचाने के लिए स्वयं उनके साथ शादी किया भगवान ने। लोग सोचते हैं भगवान इतने ऐसे कैसे हैं हमारे भगवान, इतनी पत्नियों के साथ विवाह करते हैं, ये कैसे भगवान है तुम्हारे? भगवान ने बड़ी करुणा के साथ उनका विवाह किया, उनको आश्रय दिया, उनको समाज में मान मान का स्थान दिया, सम्मानजनक स्थान दिया। तो 16,001 16,100 कन्याएं और 8 पटरानियां मिलके भगवान की 16,108 पत्नियां हुई। लेकिन ये सारी पत्नियां थी जो रुक्मिणी थी सत्यभामा थी, ये सब लोग भगवान को भगवान के बारे में उनके बचपन से सुना करती थी जहाँ जहाँ भी थे। जैसे कि रुक्मिणी विदर्भ में थी जो आज का नागपुर कहलाता है, रुक्मिणी विदर्भ में थी, वो जब से बच्ची थी तब से वो भगवान के बारे में सुनती थी कि भगवान ने ऐसे किया, फिर गिरिराज पर्वत को उठाया, फिर माखन चुराते थे, सुनती थी वो। और केवल सुनकर ही उन्होंने भगवान से प्रेम हो गया उनका और भगवान को खत भेजा उसने कि मुझे आपसे विवाह करना है, तो मैंने मन ही मन में आपको वर लिया है बिना देखे केवल सुनकर। क्योंकि तो महान व्यक्तियाँ जो होती है उनको जानने के लिए एक ही तरीका है, उनके बारे में सुनना। दिव्य व्यक्तियाँ जो है भगवान संत जो होते हैं उनके बारे में सुनकर हम जानते हैं उनका महिमा क्या है, तो रुक्मिणी उसका श्रेष्ठ उदाहरण है। लेकिन फिर भी भगवान के बारे में सुनने पर भी उनको भगवान के बारे में रोहिणी के मुख से सुनने में और इंटरेस्ट था, क्योंकि और किसी व्यक्ति से सुनना और जिसने आँखों देखा हाल सुनना, जिसमें देखा है खुद, उसमें अलग आनंद होता है। तो वो कई बार रोहिणी माता को बोलते थे, माता जी आपने दर्शन किया है भगवान के बाल लीलाओं का, हमने विवाह किया है तो वो ऑलरेडी बड़े हो चुके थे, लेकिन बाल लीलाओं का जो आपने दर्शन किया है उतना आनंद उसमें दिया है वो कब सुनाएंगे आप हमको? तो रोहिणी जी कहती थी कि देखो ऐसा है, मुझे बताने में कोई समस्या नहीं है, मैं जब चाहे बता सकती हूँ, लेकिन जब भी मैं ब्रज के बारे में कथा बताऊँगी, उनके बाल लीलाओं के बारे में वर्णन करूँगी, उसी समय भगवान कृष्ण बलराम वहाँ प्रकट हो जाएंगे। क्योंकि जहाँ जहाँ उनकी उनके बारे में ब्रज की लीला होती है वहाँ पर वो तुरंत प्रकट होते हैं, और जैसे ही सुनते हैं वो उनका मन जो है वो बालक बन जाता है, तुरंत उनको ब्रज की याद आएगी, तुरंत वो रथ को बुलाएंगे, रथ सारथी उसको बुलाएंगे, बोलेंगे चलो ब्रज में चलो हमको वहाँ जाना है। क्योंकि वो उनके जीवन में ब्रज के अलावा अति प्रसन्न अति प्रेम और किसे वस्तु से नहीं है, और अधिक प्रेम किस वस्तु से उनको नहीं है। तो आप क्या चाहती हैं? आप पत्नियाँ हैं उनकी, आप उनका संग चाहती हैं कि आप चाहती हैं कि जैसे गोपियाँ तड़प रही हैं वैसे आप यहाँ तड़पते रहो? तो जानते हैं ना गोपियाँ वहाँ पर तड़प रही हैं उनके लिए, उनके वियोग में, वो आपके साथ में हैं इसलिए वो वहाँ पर रो रही हैं। अगर मैं कथा सुनाऊँगी तो वो वहाँ चले जाएंगे, उनको संग मिलेगा, आप रोती रहेंगी, क्या चाहते हैं आप? नहीं 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 हम उनका संग छोड़ना नहीं चाहते, हम नहीं नहीं कोई कोई बात नहीं, आप कथा नहीं सुनाएंगे आपको बात। लेकिन मन में जो उत्सुकता है वो दिन ब दिन बढ़ रही है, एक बार ना बोला फिर दोबारा पूछते हैं, फिर तीन बार पूछते हैं, चौथी बार पूछते हैं, फिर वो तो समस्या क्या है? समस्या ये है कि कृष्ण बलराम आएंगे और तुरंत ब्रज में चले जाएंगे, ये समस्या है ना। चलो उसका समाधान कर लेते हैं। कैसे समाधान करेंगे? वो आएंगे नहीं ऐसी व्यवस्था करेंगे ना, आएंगे तो कहीं से आएंगे ना, इस दिशा से आएंगे या उस दिशा से आएंगे, आगे से पीछे से, 10 दिशाएँ हैं, 10 दिशा में किसी दिशा में आएंगे ना वो। एक काम करते हैं, ऐसे महल में बैठते हैं तो सारे दरवाजे बंद हैं और एक ही दरवाज़ा खुला रहेगा उसमें, उस दरवाजे पे हम लोग सुभद्रा जी को बिठाएंगे और सुभद्रा जी का काम क्या है उनको समझाते हैं। उनको काम ये है कि दूर से भी किधर भी चारों दिशा में कहीं भी आपको दो मुकुट नजर आएंगे कृष्ण बलराम के, वो आगे आने के पहले ही दरवाज़ा खटखटाने का, हम सब लोग वहाँ से उठ के चले जाएंगे और ऐसे होगा कुछ नहीं है वहाँ पर, तो वो आके सुनने का सवाल ही नहीं उठता। उनके दरवाजे के पास आने के दूर से ही आपको बताना है कि वो आ रहे हैं, तो तुरंत कथा यहाँ पर समाप्त हो जाएगी और दूसरी बार भी ऐसे ही करेंगे, फिर ऐसा करके धीरे धीरे कथा समाप्त कर लेंगे अपनी। सुभद्रा जी हाँ ठीक है, और सब रानियाँ को, उसमें एक और स्त्री थी इसका नाम था देवकी, और देवकी ने भगवान को जन्म तो दिया था लेकिन उनको दूध भी पिलाने का समय नहीं था उसके पास, केवल जन्म देके उनको त्याग देना पड़ा भगवान को, क्योंकि उन्होंने आदेश किया था कि तुरंत हमको यहाँ से ले जाओ और गोकुल में नंद महाराज के पास रख के आओ। तो देवकी का जो मातृ प्रेम था उसको व्यक्त करने का एक भी क्षण उसको मौका नहीं मिला, जन्म दिया और चले गए भगवान तुरंत। तो माता होते हुए भी ये तो पत्नी थी ना, उन्होंने उनको जन्म तो दिया, उनका बाल रूप का दर्शन तो उन्होंने किया था। जब भगवान कैसे थे, अभी तो इतने बड़े हो गए, लेकिन इतने से थे जब मैंने जन्म दिया था, तो उसके बाद में एक भी लीलाओं का दर्शन करने का मौका नहीं मिला उसको। किस घर में बालक जन्म लेता है ना, तो फिर वो कभी फिर उल्टा होता है, फिर वो खड़ा होता है, फिर घोड़ा करता है, फिर हाथ पकड़ के चलता है, फिर गिर जाता है, फिर तोतली तोतली बातें करता है, फिर क्या 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 लीलाएँ होती है। और माताएँ सब मिलकर उस पर बातें करते हैं कि हमारे बालक ने ऐसा किया, फिर वैसा किया, फिर हमारे बालक ने ऐसे किया। वो कुछ भी आनंद देवकी को नहीं मिला था, स्वयं माता होकर सोचिए उसका त्याग कितना बड़ा है। जन्म तो भगवान को दिया उसने, लेकिन भगवान के लिए एक भी बाल लीलाओं का आनंद उसको नहीं मिला, दूध पिलाने का भाग्य भी नहीं मिला। तो वो भी तड़प रही थी कि मुझे भी भगवान के बारे में सुनना है। मैंने केवल सुना है, अभी तुम्हारे मुख से सुनना है। वो वसुदेव की पत्नी है, वो भी रोहिणी वसुदेव की पत्नी, लेकिन वो विनती करती है रोहिणी को कि आप हमें कृपा करके सुनाइए। रुक्मिणी जी भी पटरानी है भगवान की, विनती करती है हमको सुनाइए भगवान के बारे में। तो ऐसी योजना बनाते हैं, सुभद्रा जी को दरवाजे पे खड़ा करते हैं, सब दरवाजे बंद कर देते हैं, एक ही दरवाजा खड़ा करते हैं, और फिर रोहिणी जी को आसन पर बिठाते हैं, नीचे सामने रुक्मिणी और देवकी और 16,107 पत्नियाँ जो है बची हुई, वो तो सारा गोल करके पास में बैठ जाती है, एकदम व्याकुल होकर सुनना है उनको, एकदम आतुर होकर सुन रहे हैं। और सब व्यवस्था ठीक ठाक होती है और दरवाज़ा बंद होता है, रोहिणी का भी जहाँ पर जो सुभद्रा खड़ी है वो बंद कर देते, उसके बाहर सुभद्रा को खड़ा करते हैं। वो सुभद्रा को भी सुनना है, ऐसे नहीं कि उसको सुनना नहीं है, उसका भी दिल है सुनने के लिए। तो वो ऐसे खड़े रहते हैं कान लगा दरवाजे पे, ऐसे दरवाज़ा यहाँ पर है, ये बाहर की जगह है, यहाँ पर कान लगाया और देख रहे हैं, इस तरह से सुन रही है। और फिर अंदर से रोहिणी के मुख से भगवान के बारे में कथा आरंभ हो जाती है। और ये कथा जो है श्रीमद् भागवतम है, स्वयं जन्म भगवान का दशम स्कंद में होता है ना, जन्म भगवान का पूरा वर्णन जब भगवान का करती है, वो जन्म का वर्णन करती है, फिर वहाँ से तुरंत कैसे भगवान को उठाकर गोकुल में लाया गया, कैसे वसुदेव ने जमुना जी के अंदर प्रवेश किया, जमुना जी दो भाग में हो गई और जमीन के अंदर वसुदेव ने उनको टोकरी में उठाकर लिया, फिर जमुना जी उनके ऊपर ऊपर तक आई, फिर उन्होंने चरण स्पर्श किया और जमुना अलग हो गई, फिर भगवान ने रास्ता बनाकर वो गए गोकुल में, और फिर वो यशोदा का वहाँ पर भी प्रसूति हुई थी, उन्होंने कन्या रत्न को जन्म दिया था। तो भगवान को उस जगह पर रखते हैं, उस कन्या को उठाते हैं, और फिर वसुदेव जी वापस आते हैं, फिर जमुना को बाढ़ आती रहती है, फिर वो फिर विनती करते हैं, फिर जमुना जी रास्ता देती है, फिर वापस चले आते हैं, फिर जेल में जाते हैं, जेल का दरवाजा अपने आप बंद हो जाते हैं, और फिर जो चेन्स है वो उनके शरीर में बिगड़ जाती है, और फिर बच्चे के रोने की आवाज़ आती है, किसकी, कन्या की। फिर कंस आता है, उस कन्या को मारने का प्रयास करता है, फिर वो आकाश में उड़ जाती है, अरे मूर्ख तुम्हें मारने वाला तो गोकुल में पैदा हो गया है। इस तरह से कथा आगे बढ़ती है। कुछ देर बाद में पुत्र आती है, सुंदर स्त्री बनकर सब बच्चों को विष पिलाती है, सब नन्हे नन्हे बालकों को मार डालती है, भगवान के घर में आती है, भगवान को लेती है, घर के पीछे जाकर उसको थन पे लगाती है, दूध पिलाती है, भगवान उसके दूध में से उसका पूरा उसका पॉइजन दूध और उसकी जान भी खींच लेते हैं, उसको मार देते हैं। फिर शक्टासुर आता है, पितृणावर्त आता है, फिर भगवान बड़े 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 होते हैं, फिर वो नटखट अपना बर्ताव आरम्भ करते हैं, फिर मटका फोड़ देते हैं, बंदरों को मक्खन खिलाते हैं, फिर यशोदा मैया डंडा लेके आती है, उनका पीछा करती है, रोकल को बांध देती है पकड़ के, दंड देती है उनको, रोकल को खींच के भगवान चले जाते हैं, दो पैरों को पेड़ों को खींचते हैं, को गिरा देते हैं, फिर नल कुबेर और मणिग्रीव जो कुबेर के पुत्र हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं, उनका उद्धार हो जाता है। इस प्रकार कथा आगे बढ़ती है, और जैसे ही ये कथा आगे आगे बढ़ रही है, वैसे सारी रानियाँ जो हैं भगवान की, उनको अति आनंद का अनुभव होने लगता है। हम तो उस स्तर पर नहीं हैं, लेकिन वो सभा जो थी उसके अंदर सब लोग अति आनंद में बेहोश हो रहे थे, आँखों से आंसू बह रहे थे, उनके शरीर में कंपन हो रहा था, हाँ बड़ी बड़ी आँखें उसमें आंसू बह रहे हैं, रोमांच खड़े हो रहे हैं, ऐसे अष्ट विकार जो है, 8 प्रकार के लक्षण हैं, वो सबके शरीर में प्रकट हो रहे हैं। सब लोग भूल रहे हैं कि वो कहाँ बैठे हैं, क्या हो रहा है, क्या आयोजन किया है, सुभद्रा को खड़ा किया है वहाँ पर पहले के रूप में, और हमको ये देखना है, सब कुछ भूल जाते हैं। वो तो निश्चिंत है क्योंकि सुभद्रा को वहाँ पर उन्होंने खड़ा कर दिया है, कोई चिंता की बात नहीं है, वो सब संभाल लेगी। जैसे भगवान दूर दूर तक नजर आएंगे, आ रहे हैं यहाँ पर, तुरंत तो वो दरवाज़ा खटखटाएगी, कथा बंद हो जाएगी और हम सब लोग चले जाएंगे। इस विचार में सब लोग निश्चिंत हैं और बड़े प्रेम से कथा का आनंद ले रहे हैं। सुभद्रा जी का ऐसा होता है कि जैसे ही भगवान के बारे में वो सुनने लगती है, उसके शरीर में भी वो पूरा परिवर्तन होने लगता है। उसके दोनों हाथ और पैर अंदर चले जाते हैं, फिर बाहर निकलते हैं और इतने लंबे होते हैं कि हर एक जॉइंट के बीच में 6-6 इंच की जगह होती है। हाँ, 6 इंच की जगह, इधर 6 इंच की जगह, इधर 6 इंच की जगह, ऐसे लंबे लंबे हाथ, ऐसे लंबे लंबे पैर हो जाते हैं। फिर अंदर आते हैं, फिर बाहर आते हैं, बड़ी बड़ी आँखें होती हैं, बड़ी मुस्कान चेहरे पर आती है, फिर आंसू बहते हैं, फिर आँख छोटे होते हैं, फिर बड़े होते हैं। ऐसे अलग अलग प्रकार के जो आनंद के अनुभव है वो सुभद्रा जी बाहर कर रही हैं, और भूल जाती है वो किस लिए खा खड़ी है, उसका काम क्या है, क्योंकि भगवान की लीला इतनी आनंद देने वाली है, वो सब कुछ भूल जाती है। और एक क्षण ऐसा आता है कथा सुनते सुनते वो वहाँ पर बेहोश होकर गिर जाती है। इस अवस्था में बड़ी बड़ी आँखें, आँखों से अश्रु बह रहे हैं, बड़ी बड़ी मुस्कान, आनंद हो रहा है ना कथा सुनकर, भगवान की खुशी हो रही है। पैर शरीर के अंदर चले गए हैं, हाथ भी शरीर, एक बॉक्स बन गया पूरा शरीर का, एक ऐसा बुरा बोलते हैं ना उसको, बांध के गांठ बांधते हैं ना, सब बड़ा बन गया। और वैसे में सुभद्रा जी गिर जाती है आनंद के अंदर, और निश्चित ही कथा सुन शुरू होते ही कृष्ण बलराम वहाँ प्रकट हो जाते हैं। और क्या देखते हैं, सुभद्रा जी पड़ी है दरवाजे के पास, दरवाज़ा बंद है, महल के सारे दरवाजे बंद है, ये भी दरवाज़ा बंद है, दरवाजे के अंदर क्या हो रहा है। इसलिए सुभद्रा जी के एक एक साइड में दोनों भाई खड़े होते हैं और दरवाजे पर कान लगाते हैं, अंदर किसी को पता नहीं क्या हो रहा है। पहरेदार जो है वो बेहोश हो गया है, और जिसको रोकना है वो आ गए, उनको मालूम नहीं। और कथा अंदर की बढ़ रही है, रासलीला की कथा हो रही है, कैसे भगवान ने बीच रात में बांसुरी बजाई है, और सब गोपियां घर में कुछ कुछ काम छोड़कर, अपने बालक को छोड़कर, पति को छोड़कर, रसोई को छोड़कर भाग भाग के जंगल में भाग रही है, भगवान भी परीक्षा ले रहे हैं, जाओ तुम वापस चले जाओ, क्यों आए बीच रात में, आप तो किसी की पत्नी हो, किसी की माता हो, किसी की बहन हो, किसी की बुआ हो, जाओ अपने घर में अपने कर्तव्य करो, इतना बीच रात में छोड़ कर कैसे आ रही हो। फिर वो भगवान को उनका बहस होता है, तो भगवान उनसे प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं और बीच रात में रासलीला करते हैं। एक रात के अंदर ब्रह्मा जी के एक रात को समेट लेते हैं भगवान। हाँ, कितने होते मालूम नहीं मुझे, 311 कोटि साल एक रात के अंदर, 8 घंटे के अंदर भगवान समेट लेते हैं और गोपियों को दिव्य आनंद देते हैं। जो कोई भी जीव भगवान के प्रति, भगवान के साथ अनुभव कर सकता है, ऐसा सबसे तीव्र आनंद जो है गोपियों को भगवान देते हैं, वो सबसे मैक्सिमम आनंद है, उससे अधिक आनंद जीव प्राप्त नहीं कर सकता है, सर्वोच्च आनंद भगवान देते हैं। तो ये सब वर्णन स्वयं कृष्ण बलराम सुन रहे हैं अपने बारे में, अपने बालपन के बारे में, ब्रज में जो जो लीला हुई वो रोहिणी के मुख से वो सुन रहे हैं बाहर, और उनके भी शरीर में ऐसे ही परिवर्तन होना आरंभ होता है, आँखों से आंसू आते हैं, रोमांच खड़े हो जाते हैं, बीच में गिर जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिर जाते हैं, फिर उठते हैं, हाथ पैर अंदर जाते हैं, हाथ पैर बाहर आते हैं, ऐसे कई देर कर वो आनंद का अनुभव करते हैं अपनी लीलाओं को सुनकर। आप बोलेंगे ऐसे कैसे, अपनी कथा सुन रहे हो, अपनी कथा में उनको आनंद आ रहा है, क्योंकि उनका बालपन वहाँ पर गया, उनको ब्रज से अधिक प्रिय कोई वस्तु नहीं है, ब्रजवासियों की अधिक कोई प्रिय जन नहीं है उनके लिए, सब प्रिय हैं लेकिन ब्रजवासी सर्वोच्च प्रिय है उनके लिए। उनके विषय में कोई बोल रहा है, उनके बाल सखाओं के बारे में वर्णन हो रहा है, उनके सखियों के बारे में वर्णन हो रहा है, उनकी लीलाओं के बारे में वर्णन हो रहा है, जमुना जी के बारे में, गोवर्धन के बारे में, रासलीला के बारे में, दर नंदगांव बरसाना ऐसे दिव्य दिव्य धाम के बारे में जो लीलाएँ हुई थी उसका वर्णन स्वयं उनकी प्रेमी भक्त जो है रोहिणी वो अपने दिव्य मुख से बड़े प्रेम से कर रही है। और आखिर में सुभद्रा जी के दोनों बाजू में एक अवस्था है, स्तंभ अवस्था। स्तंभ मतलब नो मूवमेंट, ये स्तंभ अवस्था है, मतलब अति प्रेम के कारण आदमी का पलक भी नहीं हिलता है, शरीर भी नहीं हिलता है, और स्तंभ की तरह आदमी स्थिर हो जाता है। वो 8 विकारों में से एक लक्षण है, 8 विकारों में से स्तंभ। तो स्तंभ अवस्था में आते हैं, उनके पैर अंदर चले जाते हैं, हाथ लंबे हो जाते हैं ऐसे, बड़ी बड़ी आँखें होती हैं, आँखों से आंसू बहते हैं, और सुभद्रा के दोनों तरफ गिर जाते हैं बेहोश होकर, और अंदर उसका कोई पता नहीं है बाहर में क्या हो रहा है। अंदर कथा चल रही है जोरदार एकदम, सब आनंद के सागर में डूब रहे हैं अंदर, रोहिणी जी उनको ऐसा आनंद दे रही है, देवकी जी, रुक्मिणी जी सब आनंद ले रहे हैं, आनंद विभोर हो रहे हैं, और बाहर में ये तीनों लोग बेहोश होकर गिर जाते हैं। फिर क्या होता है, आकाश से नारद मुनि नारायण नारायण नाम का जय घोष करते हुए आते रहते हैं। वो देखते तो, अरे ये भगवान का दिव्य स्वरूप कहाँ से उत्पन्न हुआ, ये क्या स्वरूप भगवान का है। इसलिए वहाँ तो उतरते हैं वो द्वारका में, और उतर के देखते हैं तो उनके हृदय में केवल कृष्ण बलराम और सुभद्रा जी का ये अद्भुत रूप देखकर ऐसा प्रेम का उनको अनुभव होता है। वो तो भगवान के प्रेमी भक्त हैं, उनके प्रति हृदय में उनके भगवान के प्रति अनंत प्रेम है, जिसका वो अनुभव पहले भी कर चुके हैं, लेकिन इस समय वो ऐसे प्रेम का अनुभव करते हैं जो पहले कभी भी उन्होंने अनुभव नहीं किया था, कभी भी नहीं किया था। ऐसे अनोखे दिव्य प्रेम का अनुभव वो इस समय करते हैं, और बहुत देर दर्शन करते हैं उस रूप का, और वो प्रेम का अनुभव करते रहते हैं। उसके बाद में वो भगवान को छूते हैं, जैसे छूते हैं तो भगवान फिर से उनका शरीर जो है पहले जैसा बन जाता है, मतलब पैर बाहर निकलते हैं और फिर वो पहले जैसे हो जाते हैं और खड़े हो जाते हैं। नारद जी कहते हैं, अरे भगवान ये क्या दिव्य दर्शन था आपका, ऐसा दर्शन मैंने पहले कभी भी नहीं किया था। और उसकी महानता ये दर्शन की कि जैसा प्रेम मैंने आज तक अनुभव नहीं किया, ऐसा दिव्य प्रेम मैंने आपको केवल देखने मात्र से किया है, ये कैसा आपका स्वरूप था। ये भगवान हंस देते हैं, तो भगवान मैं आपसे वरदान चाहता हूँ। क्या वरदान चाहते हैं, क्योंकि संत लोग जो होते हैं ना वो दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं, लेकिन जब खुद दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं तो हमारे भी सोचते हैं कि मुझे तो दिव्य आनंद मिल गया, लेकिन जो जीव कलयुग में भौतिक जगत में दुख भोगते हुए पड़े हुए हैं उनको ही आनंद मिलना चाहिए, तब जाकर वो छोड़कर तुम्हारे पास में आएंगे भगवान के पास। तो उनके मन में हम जैसे पतित लोगों के लिए करुणा है, सोचते हमारे बारे में हो कि हम लोग कितने जन्म से इस भौतिक दुनिया में जन्म मृत्यु जरा व्याधि इस कष्ट को भोगते हुए यहाँ पर बार बार जन्म ले रहे हैं, तो आनंद भोगते हुए उनके मन में करुणा भी है, हमारी याद भी है। ये संत है, संत की व्याख्या मतलब वो आनंद मशगूल होने के बाद भी अपनी करुणा को भूलते नहीं है। उस करुणा के वश उन्होंने भगवान से एक वरदान मांगा, जिसके लिए हम सबको नारद मुनि के प्रति ऋणी होना चाहिए। हम सबके लिए उन्होंने वरदान मांगा, उन्होंने कहा कि हे भगवान, जो आनंद मुझे आपको केवल देखने से मिला है, मेरी इच्छा है कि कलयुग के सभी जीवों को आनंद मिले आपको देखने का। क्योंकि केवल देखना नहीं है, ये नेत्र उत्सव है, हमारे आंखों के लिए दिव्य उत्सव है आपका दर्शन करना। तो मैं आपसे वादा चाहता हूँ कि आप कलयुग में इसी रूप में प्रकट हो जाएंगे। तो भगवान ने उनको तथास्तु कहा, इसलिए इस रूप में जगन्नाथ भगवान कलयुग में प्रकट हुए हैं। ये उनका कारण ये है, इसलिए वो इस अवस्था में है। इस रूप को देखकर नारद मुनि को दिव्य आनंद का अनुभव हुआ था, वही दिव्य आनंद अपने भक्तों को देने के लिए मैं आपको अगली बार बताऊंगा, क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है। अगली बार बताऊंगा कि कैसे ये कलयुग में इनका अवतरण हुआ, क्या कथा थी वो जिसके कारण ये नारद मुनि का जो वादा किया था वो कैसे उन्होंने पूरा किया, और कैसे सत्ययुग में वो आए, और कैसे जगन्नाथपुर में स्थिर था वो। संक्षेप में कहने की बात यह है कि ये जो है द्वारका के भगवान हैं। जब घटना कहाँ हुई, द्वारका में हुई ना, द्वारका के भगवान मतलब ऐश्वर्य संपन्न है, 56 भोग को लेते रोज वहाँ पर, रुक्मिणी देवी सारी रानियाँ अपने हाथों से उनके लिए भोजन बनाती हैं, और वो एक साथ में सभी रानियों के घर में विराजमान रहते हैं। नारद मुनि जी एक बार गए थे उनको मिलने के लिए शादी होने के बाद, भले हमारे पास तो एक पत्नी को संभालना इतना मुश्किल, एक पत्नी को खुश रखना तो उससे ज़्यादा मुश्किल, ये तो 16,108 पत्नियों के साथ में रह रहे हैं, क्या हो रहा है, झगड़ा हो रहा है क्या, हाँ रुसवाई हो रही है, क्या हो रहा है, ढके देख के आते हैं जरा क्या हो रहा है, कोई झगड़ा कर रही है कि हमारे घर में नहीं आए, उसके घर में बैठे रात तक मैंने वेट किया तुम आए नहीं हमारे घर में, मैंने ये बना के रखा था, क्या हो रहा है जरा देख के, देखने को चाहे। तो नारद मुनि जब द्वारका में जाते हैं तो भागवत में उसका वर्णन आता है कि जैसे ही भगवान अपने दरबार से उतरे तो अचानक 16,108 रूप में उन्होंने अपने आप को विस्तारित किया, और हर एक रूप एक एक महल में चला गया, मतलब एक ही साथ में भगवान सब पत्नियों के साथ में विराजमान है। रासलीला कर रहे थे ना, तो 16,108 नहीं थी गोपियां, वो लाखों लाखों गोपियां थी, लेकिन हर गोपी के साथ में भगवान नृत्य कर रहे थे और हर गोपी को लग रहा था कि केवल मेरे साथ नृत्य कर रही है। हर गोपी को लग रहा था कि मैं इतनी भाग्यवान हूँ, इतनी विशेष हूँ, इतनी स्पेशल हूँ कि मेरे साथ में भगवान केवल सबको छोड़ के मेरे साथ बैठे हुए नाच कर रहे हैं। वो तो लाखों लाखों रूप भगवान ने बनाए थे, तो केवल 16,108 नारद मुनि ने देखा उनके आंखों के सामने, दरबार से उतरे और इतना रूप लेकर एक एक रूप एक एक महल में चला गया और फिर यहाँ झूला झूल रहे हैं, कहीं बच्चों के साथ खेल रहे हैं, कहीं रोटी पा रहे हैं, कहीं मक्खन खा रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं शयन कर रहे हैं, कहीं गार्डन में बैठे हुए हैं, कोई मजाक कर रहे हैं, कोई हर महल में अलग अलग लीला है, अलग अलग पत्नी के साथ में, और सभी रानियाँ उनके एक साथ में संतुष्ट हैं। कोई किसी की असूया नहीं कर रही है कि ये उनके साथ ज़्यादा समय बिता रहे हैं, वो उनको अधिक प्रिय है, मैं उनको कम प्रिय हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। सब रानियाँ उनके संतुष्ट हैं, ऐसे भगवान हैं, उनके लिए कोई डिफिकल्ट नहीं है। अरे हम तो 16,108 और लाखों करोड़ों की बात कर रहे हैं, ऐसे करोड़ों 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 जीव जो हैं हम सब हैं ना, हम सबके जीव शरीर में, हमें आत्मा में, हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है कि नहीं? वही भगवान हर एक के हृदय में बैठे हैं। आप कीड़ा मकोड़ा बनोगे तो उसके हृदय में भी परमात्मा विराजमान है, आप गटर में कीड़ा होगा तो उसके अंदर हृदय में भी भगवान विराजमान है। हर जीव के साथ भगवान का कंपनी है, तो खाली पत्नियों के साथ में कंपनी देना क्या मुश्किल है उनके लिए? अगर हम सबके हृदय में परमात्मा के रूप में हमको सहायता, हमको मार्गदर्शन, हमको संग दे रहे हैं वो, ये उनकी लीला है। इसकी लीला को हम समझ नहीं सकते, कैसे कर सकते भगवान, लेकिन जानते ज़रूर है कि हर के हृदय में आवाज़ है। एक शराब पीते तो आवाज़ बोलती है मत पियो, तो चोरी करता है आदमी तो आवाज़ बोलती है मत करो, तो परमात्मा की आवाज़ है, लेकिन हम उसको दुर्लक्ष करते हैं। हाँ, हम जब काम चोरी करते हैं तो भगवान बोलता है काम चोरी कर रहे हैं, अच्छा नहीं कर रहे, लेकिन हम दुर्लक्ष करते हैं उस आवाज़ को, तो अपना काम चालू रखते हैं, फिर हमको उसका फल भोगना पड़ता है। तो ऐसे ही भगवान हैं, और उन्होंने फिर कलयुग में द्वारका के भगवान, कहने का तात्पर्य यह था मेरा कि वो द्वारका के ऐश्वर्य संपन्न भगवान हैं, अपना सारा ऐश्वर्य का अनुभव आनंद वहाँ लेते हैं द्वारका में। तो द्वारका के भगवान कैसे हैं वो, जब वो गिर गए बेहोश होकर तो क्या अवस्था होगी उनको, ब्रज की याद में डूब गए वो, राजा द्वारका का ब्रज के विचार में डूब गया, आनंद में और प्रेम में विभोर होकर, और कहाँ पे विराजमान हो गए कलयुग में आके, जगन्नाथपुरी में, मतलब उनके अंदर जगन्नाथपुरी, द्वारका और ब्रज तीनों मिला हुआ है कि नहीं? लॉजिकल आपको जस्ती बात है, द्वारका का ऐश्वर्य भी है, ब्रज की याद भी है, प्रेम भी है, और जगन्नाथपुरी का निवास है समुन्द्र के किनारे, उसका नाम है पुरुषोत्तम क्षेत्र। उस जगन्नाथपुरी का जो संस्कृत नाम है उसको बोलते हैं पुरुषोत्तम क्षेत्र, जहाँ पर जगन्नाथपुरी को भगवान ने निवास किया है, और उसके शुरुआत में एक क्षेत्र है उसका नाम है भुवनेश्वर, उसकी भी 10 मिनट में कहानी बता देते हैं आपको। भुवनेश्वर जो है वो जगन्नाथपुरी की शुरुआत है, और जगन्नाथपुरी जो क्षेत्र है उसका नाम है पुरुषोत्तम क्षेत्र, वो शंख के रूप में है, शंख हम लोग बजाते ना, उस शंख के रूप में वो धाम है, उसके शुरुआत में जो है भुवनेश्वर धाम। तो बाणासुर नाम का एक राक्षस था, उसने शिव जी की तपस्या की और वरदान मांगा कि मुझे 1,000 हाथ दो, जब आप नृत्य करेंगे तो मुझे ढोल बजाने की इच्छा है, तो मैं 1,000 हाथ से आपको लिए ढोल बजाऊंगा और आपको आनंद दूंगा। भगवान ने बोला ठीक है, शिव जी भगवान ने वरदान दे दिया उसको, तो बाणासुर के 1,000 हाथ हो गए और 1,000 हाथ से वो मृदंग बजाने लगा। लेकिन जब नृत्य खत्म हुआ हाथ फ्री हो गए उसके, और इतना बल था उसके हाथ में कि हाथ उसको काटने लगे, तो जाके वो पर्वत पे हाथ तोड़ के पर्वत को चकनाचूर करता था, कहाँ जाके खड़क पत्थर को पाउडर बना देता था, बहुत शक्ति थी उसको हाथ में, तो हाथ उसको शांत बैठना मुश्किल हो गया उसको, तो सब जगह जाके चैलेंज करता था मेरे साथ युद्ध करो। तो एक बार वो मेरे ख्याल से ब्रह्मा जी के पास गए, बोले मुझसे युद्ध करो, मुझे युद्ध करने की इच्छा है। तो ब्रह्मा जी के पास थे वो एक देवता है जो थोड़े बुजुर्ग से देवता है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, वो कह रहे थे वरुण देव के पास गए, वरुण देव के पास गए, बोले वरुण देव युद्ध करो मुझसे आप। वरुण ने कहा मुझे क्यों कष्ट दे रहे हो, मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ, आपके लिए एक ही योद्धा है, सबसे बढ़िया योद्धा एक ही है, वो है कृष्ण भगवान, जो आपके बराबर ही का है ना। हम तो बूढ़े हैं, आपको आपके हाथ से मर जाएंगे, हमको मार के आपको क्या आनंद मिलेगा युद्ध करने का। आपके लिए बराबरी का योद्धा होना चाहिए। तो आप कृष्ण भगवान को चैलेंज करो, उनको आह्वान दो, फिर वो उनसे आपको आनंद आएगा, आपकी शक्ति का भी इस्तेमाल हो जाएगा। आप बोलते ना शक्ति का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, तो जाके वो बाणासुर जो है भगवान को आह्वान करते हैं। और भगवान से जब आह्वान करते तो पहले से बोलते हैं कि मुझे भगवान का वध करना है, ऐसे वर मांगते हैं शिव जी से। तो शिव जी उनको क्या बोलते हैं, जब भी आप भगवान से लड़ोगे ना तो मैं तुरंत सेना लेके तुम्हारे पीछे खड़ा हो जाऊँगा। मतलब वो वर क्या मांगते हैं कि मुझे कृष्ण को मारने का वरदान दो। तो हाँ नहीं बोलते हो, वो उसको ज़रा उल्लू बनाते हैं। उसको क्या बोलते हैं कि तुम जब भी कृष्ण भगवान से युद्ध करने का समय आएगा तो तुम्हारे पीछे पीछे तुरंत मेरी सेना लेकर मैं खड़ा हो जाऊँ। बोले ये आ जाएंगे तो मारने में कोई डिफिकल्टी होगी। तो अगर उन्होंने नहीं बोला कि मार देगा वरना नहीं दिया होगा, कोई समस्या नहीं है। तो जैसे ही वो कृष्ण को चैलेंज करते हैं, शिवजी अपनी गण और सब जो सेना है उनकी, भूत प्रेत की सेना है, सबको लेकर शिवजी रणांगण में आते हैं। और बहुत घनघोर युद्ध होता है, भागवत में उसका बहुत विशाल वर्णन दिया है। संक्षेप में कहा जाए तो भगवान पहले बाणासुर के 998 हाथ काट डालते हैं और दो याद रखते गए, उसका अहंकार कम कर देते, शांत कर देते उसको। बाणासुर को मारते क्यों नहीं वो, क्योंकि नरसिंह अवतार में उन्होंने प्रहलाद जी को वरदान दिया था कि न केवल तुम्हारी पीढ़ी को, तुम्हारे आगे की 10 पीढ़ी और तुम्हारे पहले के 10 पीढ़ी, 21 पीढ़ियों का मैं उद्धार करूंगा, मतलब उनको मारूंगा नहीं। बाणासुर जो था, प्रहलाद का पुत्र था विरोचन, उसका पुत्र था बलि और बलि का पुत्र था बाणासुर, तो उसी कुल में आ गया ना, वो वादा किया था उसी कुल में आ गया वो, तो उसको मारते नहीं वो, उसके 998 हाथ काट देते हैं और उसका अहंकार को शांत कर देते हैं। लेकिन बीच में शिवजी का युद्ध हो रहा है, बार बार शिवजी भगवान उनको अलग अलग अस्त्रों उनके ऊपर फेंक रहे हैं। भगवान बहुत भयंकर वर्णन दिया उसको भागवत में कि वो ठंडा अस्त्र भेजते हैं तो भगवान गर्म अस्त्र भेजते हैं, फिर वो गर्म अस्त्र भेजते भगवान ठंडा अस्त्र भेजते हैं, और लास्ट में सुदर्शन अस्त्र को भेजते हैं भगवान। और सुदर्शन जब भगवान शिवजी पर अटैक करता है तो शिवजी भागने लगते हैं। उसके बीच में जब युद्ध होता है तो सुदर्शन अस्त्र जो है, चक्र जो है, वो जाकर शिवजी की जो नगरी है काशी नगरी, आज बनारस बोलते हैं उसको, वो काशी नगर को पूरा जलाकर भस्म कर देता है। शिवजी का निवास स्थान है वो, बहुत बढ़िया निवास स्थान है। वो चक्र जो है जाकर पूरा भस्म कर देता है, पूरा ध्वस्त कर देता है उसको, और फिर आके शिवजी के पीछे लगता है। और शिवजी भागते हैं पूरे जग में सब जगह पर, लेकिन चक्र उनको छोड़ता नहीं है। फिर सब दुनिया में भागते 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 शिवजी जो है भगवान कृष्ण के चरणों में आके गिर जाते हैं। बोले बचाओ, माफ़ कर देना, मैं तुमने राक्षस का पक्ष लिया है, लेकिन फिर मैं तुमसे प्रसन्न हूँ क्योंकि तुमने सब लीला किया है, मैं जानता हूँ। और भगवान के शरण लेते हैं तो चक्र का जो त्रास है वो कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, और फिर चक्र भगवान के हाथ में जाता है। तो भगवान शिवजी पर प्रसन्न होकर उनको वरदान देते हैं कि मेरा जो धाम है, ऐसा धाम है जगन्नाथपुरी धाम जहाँ पर प्रलय के समय पर भी वो नष्ट नहीं हो सकता है, सब लोग नष्ट हो जाएंगे लेकिन जगन्नाथपुरी धाम, वृंदावन धाम, अयोध्या ये नष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि भगवान का ये निज धाम है, उनका घर है, ये काल के प्रभाव से मुक्त है। तो मेरा जो दिव्य धाम है शंख रूप में जगन्नाथपुरी, उसके शुरुआत में आपको मैं निवास स्थान देता हूँ परमानेंट। उसका नाम है एकात्मवन, एक आम्रवन, उसमें आम के पेड़ हैं अभी भी। और आपको वरदान देता हूँ कि जब तक कोई भी यात्री मेरे धाम में आने के पहले आपके पास आएगा और आपका प्रसाद और दर्शन और कृपा प्राप्त करने के बाद ही वो मेरे धाम में आने के योग्य हो जाएगा, ऐसा वरदान देते हैं। इसलिए आज भी प्रण ऐसा होता है, जब जगन्नाथपुर जाते हैं तो सबसे पहले भुवनेश्वर में जाते हैं, भुवनेश्वर के मंदिर में दर्शन करते हैं, चरणामृत लेते हैं, वंदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और उनका प्रसाद प्राप्त करने के बाद ही जगन्नाथपुरी प्रवेश करते हैं। और भी वरदान देते हैं उनको, उनको कहते हैं कि जगन्नाथपुर में जब मैं निवास करूँगा तो वहाँ पर मैं 56 भोग का रोज आनंद लूँगा और मेरा महाप्रसाद सबसे पहले आपको दिया जाएगा, यहाँ से ले जाकर भुवनेश्वर में आपको अर्पण किया जाएगा। जगन्नाथपुरी में जो आपका प्रसाद पाएगा वो मेरा ही महाप्रसाद होगा। इसलिए भुवनेश्वर ऐसी जगह है जहाँ पर हम लोग बड़े प्रेम से प्रसाद प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ से 1.5 घंटे का रास्ता जगन्नाथपुरी। तो इस तरह से भगवान ने शिवजी को अपने धाम के पास में आश्रय दिया है। सुंदर कथा है इसे। तो ये जगन्नाथपुरी में भगवान कैसे विराजमान हुए इसकी कथा हम अगली बार आपको सुनाएंगे। बहुत सुंदर कथा है, बहुत ही सुंदर कथा है। शायद समय पर हम उनको पूरा कर सकेंगे ऐसी उम्मीद है। आप सब लोग आइए और इस कथा को सुनिए। श्री जगन्नाथ भगवान की, हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। तो किसी का प्रश्न है इसके ऊपर? एनी क्वेश्चन? आप लोगों की विनती है, अभी हमने कल ही मिडिल लेवल मैनेजमेंट का मीटिंग लिया है और उसमें हमारा जो सप्ताह है अभी जो शुरू हो रहा है 26 तारीख से 2 जुलाई तक, उसके बारे में हमने सबको समझाया है और आप सब लोगों को वो बताएंगे। मैंने जो उनको बताया कल वो सब आप लोगों को बताएंगे, हर एक कर्मचारी उसमें कवर करेंगे वो। तो उसमें हमने आप सबको एक विनती की थी जो हम हर साल करते हैं, हर साल से करते आ रहे हैं, वो ये है कि आपकी ड्यूटी आप जब करते हैं तो 4 घंटा होने के बाद में आप लोग अपने मुख को धोएंगे अच्छी तरह से, फ्रेश हो जाएंगे, बाल बाल बनाएंगे, फर्स्ट क्लास मुंह को साबुन से धोएंगे और फिर अगले 4 घंटे की ड्यूटी करेंगे। उससे क्या होगा कि आप लोग 8 घंटा फ्रेश रहेंगे। और इस कथा में आने के पहले भी आपको विनती है, क्योंकि आप लोग काम करके थके आते हैं ना। कोई लोग फर्स्ट शिफ्ट करके पूरे दिन करके आ रहे हैं, कोई सेकेंड शिफ्ट में शुरू कर रहे हैं अपना काम, घर से लौट के आ रहे हैं। तो इस कथा का आनंद लेने के लिए भी आपको ज़रूरी है कि आप लोग अपना मुंह धो के एकदम फ्रेश होकर आ जाए। तो कथा में बीच बीच में आप सो जाएंगे तो आपको इंपॉर्टेंट पार्ट मिस हो जाएगा। आपको बोले क्या कहा था, क्या डॉक्टर साहब ने क्या बताया बीच में, वो तो पार्ट मैंने मिस कर दिया क्योंकि मैं निद्रा लोक में था उस समय। ऐसा हो जाएगा। इसलिए मेरी विनती आपको है कि आप लोग सब लोग इस प्रोग्राम में, जैसे भगवान के नाम का जप तो करना है आपको ना, आधा घंटा आप जप करेंगे 2:30 से 3 बजे तक, तब भी आप सो सकते हो थके होंगे तो जप करने के लिए भी आप फ्रेश होकर आओ और फ्रेश होकर जप करो, भगवान को प्रसन्न करो जप करके, और फिर बड़े प्रसन्न मन से, उत्साही मन से और जागृत मन से, जगे हुए इस अवस्था में अब 1 घंटा कथा सुनो, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की। थैंक यू वेरी मच।